क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन को और विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस मद में 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा खुले में शौच रहित गांवों को पुरस्कार देने की भी योजना लॉन्च की गई है। विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद फल पट्टी को बक्सी का तालाब फल पट्टी से जोड़ने के लिए नया रेलखंड बनाया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में रेल बजट पेश करते समय इसकी जानकारी दी। रेल मंत्री ने इस नए रेलखंड के लिए बजट आवंटित किए जाने की भी बात कही। क्षेत्रीय सांसद कौशल किशोर ने बताया कि लखनऊ में मलिहाबाद इटौंजा वाया माल रेलखंड बनने से क्षेत्रीय किसानों को विशेष कर आम के बागवानों और व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। इस रेलखंड के बन जाने पर यहां के बागवान अपना आम आसानी से देश विदेश की मंडियों में भेज सकेंगे। गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार एवं रूफा संस्थान नीदरलैंड के संयुक्त तत्वाधान में नई दिल्ली में पेरी अर्बन एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम विषय 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन ने कहा कि स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की तरह ही पेरी अर्बन एग्रीकल्चर को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले समय में गाँव से शहर की तरफ रोजगार के लिए आने वाले लोगों के लिए ये सुविधाजनक रहेगा कि पेरी अर्बन को पर्यावरण सम्मत बनाया जाए, जिससे उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सकें। पेरी अर्बन एरिया के विकसित होने से बाढ़ और पानी के जमाव की परेशानी से निपटा जा सकेगा। शहरों के पास पड़ी जमीन का खेती के लिए उपयोग करके रोजगार के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। केरल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पेरी अर्बन एरिया में कृषि को लेकर बहुत काम हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं उद्यान आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा ने कहा कि पिछले दशक में खेती के क्षेत्र में भारत ने बहुत तरक्की की है। पिछले वर्ष सबसे अधिक उत्पादन किया गया, इसके बाद भी दाल, तेल और सब्जी के दामों में तेजी आई, जिसका कारण जनसंख्या का बढ़ता दबाव रहा है। गाँव से शहरों की तरफ आने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। वर्ष 2020 तक ये संख्या 60% होने का अनुमान है। भारत सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कृषि उत्पादन के साथ साथ खाने में पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पेरी अर्बन एरिया का भी उपयोग करने की नीति तैयार की गई है। पेरी अर्बन एरिया में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 500 वर्ग फुट से लेकर 5000 वर्ग फीट से अधिक के पॉली हाउस बनाकर खेती की जा सकती है। पर्यावरणविद डॉक्टर सिराज वजीह ने कहा कि विश्व में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जहां 20वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व के नगरीय क्षेत्रों में आबादी 15% थी, वहीं वर्ष 2007 में विश्व की नगरीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज्यादा हो गई। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक विश्व की 3/4 जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में होगी। बंगलुरु की डॉक्टर सुमिति पहावा ने कहा कि पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में सब्जियों की खेती, फूलों एवं फलों की खेती किसानों के लिए उनकी आजीविका का एक प्रमुख साधन है। दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी, अमृत सिटी जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं द्वारा शहर की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस दिशा में नगरीय परिक्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। नगरीय परिक्षेत्र कृषि शहर के कमजोर वर्ग की आबादी हेतु बड़ा सहारा होती है। साथ ही परिक्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन नगरों को जलवायु परिवर्तन प्रभावों से निपटने में अपना योगदान देते हैं। बढ़ते बाढ़, जल जमाव, तापमान की बढ़ोतरी, सूखा, जल की कमी आदि जैसे परिस्थितियों से नगरों को सशक्त करने में इनकी अहम भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदेश की समग्र कृषि के सुदृढ़ीकरण, उसके सम्मुख आ रही चुनौतियों के समाधान एवं देश में सर्वोच्च स्तर पर स्थापित किए जाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 4th उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2 मार्च से हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में हो रही कांग्रेस का समापन प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक करेंगे। विज्ञान कांग्रेस में कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंजाब सिंह और प्रोफेसर HS गुप्ता सहित अनेक ख्यात प्राप्त वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा आगरा के प्रतिष्ठित सेंट जोन्स कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू चैलेंजेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन द कंटेस्ट ऑफ 21st सेंचुरी का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक
प्रोफेसर राजेंद्र कुमार को अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन तथा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अक्टूबर तक रोशन हो सकता है पूरा यूपी। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड स्कीमों के तहत 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों एवं मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ यूपी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो यूपी के सभी गांव और मजरे के विद्युतीकरण का काम अक्टूबर 2016 तक पूरा करा लिया जाएगा। ऊर्जा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस वर्ष अक्टूबर तक प्रदेश की लगभग 1,00,000 मजरों में बिजली पहुंच जाएगी। करीब 36,000 गांवों में भी विद्युत आपूर्ति होने लगेगी। गौरतलब हो कि देश में 1 अप्रैल 2015 तक 18,542 गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। इसमें 5,542 गांवों का विद्युतीकरण 23 फरवरी 2016 तक हो गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के 1.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों की 9.8 लाख महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य रखा है। ये स्वयं सहायता समूह कई प्रकार के घरेलू उद्योगों के अलावा पशुपालन, फूलों की खेती व मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय करेंगे। इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। इस योजना से प्रदेश में फूलों की खेती और मौन पालन को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में शासन स्तर से जिला मुख्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पशुपालन विभाग अब किसानों को पशु देते समय उनसे एक शपथ पत्र लेगा। उस शपथ पत्र में किसान को शपथ लेनी होगी कि उन्होंने पहले कभी पशु बलि नहीं की है, वह कभी पशु क्रूरता के मामले में शामिल नहीं रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पशुपालन विभाग ने पशुओं की सुपुर्दगी और देखभाल के नियमों में बदलाव किया है। पशुओं को किसान को सौंपते समय उनका न केवल रिकॉर्ड जांचा जाएगा बल्कि पशु का भी मेडिकल चेकअप होगा। ये कवायद पशुओं की बलि और क्रूरता से बचाने के लिए की जा रही है। ये थे आज के कृषि समाचार। नमस्कार।
अभी आप विज्ञान और किसान कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि समाचार सुन रहे थे। आलेख व स्वर थे नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान के तथा संपादन व प्रस्तुति थी डॉक्टर सुशील कुमार राय की। विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।